इंदर कुछ कह पाता उससे पहले ही कृति उठ खड़ी हुई। वो उसके पास आई, ईयरफोन का एक हिस्सा निकालकर सीधा उसके कान में लगा दिया और दूसरा अपने कान में रहने दिया। अचानक तेज म्यूजिक की धुन उसके कानों में गूंज उठी, वही गाना जो कृति को बेहद पसंद था। तेज बीट्स, थोड़ी सी बगावती धुन, बिल्कुल उसी की तरह। इंदर ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड में ही उसे एहसास हुआ कि यह म्यूजिक उसे अजीब सा सुकून दे रहा है। वो धीरे धीरे उस धुन में डूबने लगा। कृति सोफे पर वापस लेट गई, सिर हल्का सा हिलाते हुए गाने के साथ झूमने लगी। इंदर भी बेड पर लेटा लेटा उसी रिदम में सांस लेने लगा। कमरे में अब कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस म्यूजिक था। अजीब बात यह थी कि ये दोनों कभी खास दोस्त भी नहीं रहे थे। एक तरफ कृति, लापरवाह, बेधड़क, अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की, दूसरी तरफ इंदर, संवेदनशील, जो उसी और की बड़ी बहन से प्यार कर बैठा और उसी खामोशी में खुद को समेटे था। दो अलग दुनिया के लोग, दो अलग सोच, जिनका साथ होना कभी उनकी पसंद नहीं थी। मगर उस रात अस्पताल के उस कमरे में हालात ने उन्हें एक ही धुन में बांध दिया था। शायद मजबूरी थी, शायद हालात थे, या फिर किस्मत चुपचाप अपनी कहानी लिख रही थी। गाने की आखिरी लाइन खत्म हुई मगर दोनों ने ईयरफोन नहीं निकाला। कृति की आंखें भी बंद थीं मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद ये कोई शुरुआत नहीं थी, शायद ये सिर्फ एक पल था। मगर कई बार कहानियां शोर से नहीं, खामोशी और एक गाने से शुरू होती हैं। जय सानवी और आर्यन के साथ घर आ गया था। रास्ते भर वो अपनी छोटी छोटी बातें करता रहा, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी सानवी से कुछ पूछ लेता। घर पहुंचते ही सानवी ने उसके हाथ धुलवाए और सीधे किचन की तरफ ले गई। आज जय के पसंद का खाना बनेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी ही देर में रसोई से खुशबू फैल गई। सानवी प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। एक और बाइट, वो मनुहार करते हुए बोली। जय ने मुंह बनाया, फिर हंसते हुए खाना खा लिया। आर्यन ये सब दूर से देख रहा था, दोनों उसे भीतर से सुकून दे रहे थे। खाना खत्म होते होते जय की आंखों में हल्की सी सुस्ती उतर आई थी। सानवी उसके कमरे की तरफ ले गई, बेड पर लिटाकर वो उसके पास बैठ गई, जबकि आर्यन बेड के एक कोने पर टिक कर बैठ गया। अब स्टोरी, जय ने आंखें मलते हुए कहा। सानवी मुस्कुराई। ठीक है, आज एक राजकुमार की कहानी सुनाती हूँ। उसकी आवाज नर्म और सुकून भरी थी। एक बार की बात है, एक बहुत ही बहादुर राजकुमार था जो अपने राज्य के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। जय ध्यान से सुन रहा था, कभी कभी बीच में सवाल पूछ लेता। फिर क्या हुआ? सानवी हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई कहानी आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे जय की पलकें भारी होने लगी, उसकी सांसें गहरी और बराबर हो गई। कहानी खत्म होने से पहले ही वो गहरी नींद में चला गया। सानवी ने धीरे से उसकी चादर ठीक की और आर्यन की तरफ देखा। दोनों बिना आवाज किए उठे और कमरे से बाहर आ गए, दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। बाहर आकर आर्यन मुस्कुराया। बच्चों को सुलाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसने हल्के मजाक में कहा। सानवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इतना मुश्किल भी नहीं, वो बोली, और इतना आसान भी नहीं। उस घर में उस पल खामोशी थी, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सानवी अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से आर्यन की आवाज आई। सानवी, एक मिनट। वो रुकी और पलटकर उसकी तरफ देखती है। आर्यन थोड़ा गंभीर था, आवाज में हल्की चिंता साफ छलक रही थी। रात को जय उठ सकता है, तुम्हें उसकी आदत पता है, वो रात में अक्सर डर जाता है। अगर उसने उठकर मुझे ढूंढा और हमें अलग अलग कमरों में देखा तो 100 सवाल करेगा, सानवी कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने बात आगे बढ़ाई। और जय सवाल सिर्फ हमसे नहीं करेगा, ये बातें विक्रांत तक भी जा सकती हैं। इस वक्त जय की कस्टडी उन्हीं के पास है, विक्रांत और जैसिका के पास। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि हमारी शादी सिर्फ दिखावे की है तो वे हमारी शादी पर सवाल खड़े कर देंगे। सानवी चुपचाप सुनती रही और फिर आर्यन ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, हमें जय की कस्टडी नहीं मिलेगी। ये बात सानवी को सही लगी। वो कुछ पल सोच में डूबी रही। वो अलग कमरे में सोना चाहती थी, अपनी सीमाओं के साथ, अपने मन की शांति के लिए। मगर जय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने बिना ज्यादा भाव दिखाया कहा। आर्यन ने राहत की सांस ली, मगर सानवी ने तुरंत आगे कहा, उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी, मैं तुम्हारे साथ कमरे में सिर्फ जय के लिए आ रही हूँ, सिर्फ उसके लिए। वो रुकी, फिर आर्यन की आंखों में देखकर बोली, इसका कोई और मतलब मत निकालना, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए, ये फैसला जय की खुशी और उसकी सुरक्षा के लिए है। उसके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस एक साफ रेखा थी। वह जैसे ये जता रही हो कि जय उसके लिए कितना अहम है, और साथ ही ये भी कि ये साथ सिर्फ हालात की वजह से है, दिल की वजह से नहीं। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, उसने बस इतना कहा। दोनों एक साथ कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में कदम रखते वक्त उनके बीच एक अनकहा समझौता था। ये साथ मजबूरी का था, दिखावे का था, मगर जय के लिए था। रात चुपचाप बीत गई थी। आर्यन के कमरे में बड़ा सा किंग साइज बेड था। सोफा उतना बड़ा नहीं था कि कोई आराम से सो सके, इसलिए दोनों ने बेड पर ही सोने का फैसला किया, बिल्कुल किनारों पर, अलग अलग ब्लैंकेट में। बीच में एक अनकही दूरी थी, एक खामोश समझौता। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। जय अपने कमरे में चैन से सो रहा था। ये सोचकर दोनों थोड़े निश्चिंत थे। रात कब करवट बदल गई किसी को पता नहीं चला। सुबह की हल्की धूप जब पर्दों से छनकर कमरे में आई तो सैनवी की आंख खुली। पहला एहसास गर्माहट, दूसरा एहसास किसी की सांसें। वह जैसे एक पर को ठिठक गई। उसने हल्का सा हिलकर देखा। वह आर्यन की बाहों में थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था। उसका सिर आर्यन के सीने के पास टिका हुआ था और आर्यन की एक बांह अनजाने में उसके चारों ओर थी। दोनों के ब्लैंकेट रात में खिसक चुके थे। सैनवी गहरी सुकून भरी नींद में सो रही थी, जैसे वहां होना स्वाभाविक हो। अचानक उसे होश आया, उसकी सांस तेज हो गई। ये कैसे? उसने खुद से कुछ नहीं कहा, मगर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन की आंख अभी बंद थी, उसका चेहरा शांत था, जैसे इस पल से अनजान। सैनवी ने बहुत सावधानी से खुद को उसकी बाहों से अलग किया। हर हरकत में झिझक थी, जल्दबाजी भी। उठते ही उसने बहाना बना लिया, मुझे लगता है जय बुला रहा है। वह ये कहते हुए लगभग फुसफुसाई और जल्दी जल्दी ब्लैंकेट ठीक कर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते वक्त उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कमरे से निकलते ही उसने गहरी सांस ली। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे वो पल अजीब भी लगा और बेवजह का भी, और सबसे ज्यादा ऑकवर्ड। उधर थोड़ी देर बाद आर्यन की आंख खुली। उसने हाथ बढ़ाया, खालीपन। सैनवी वहां नहीं थी। वह उठकर बैठ गया। उसकी नजर दरवाजे पर गई, जो अभी अभी बंद हुआ था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, अनायास बिना सोचे। कमरे में अब भी सैनवी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू हल्की सी मगर साफ, जैसे सुबह की हवा में खुली हो। आर्यन कुछ पल वहीं बैठा रहा। वो जानता था ये सब इत्तेफाक था, मजबूरी थी, हालात थे, मगर फिर भी उसके चेहरे पर ठहरी मुस्कान ये बता रही थी कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिना पूछे बिना इजाजत दिल में जगह बना ही लेते हैं। और सैनवी, वह जय के कमरे की तरफ जाते हुए भी बार बार खुद से यही कह रही थी, ये बस एक हादसा था, बस जय के सीन, जय। आज जय उनके पास था। सुबह की जल्दी कहीं भागने की जरूरत नहीं थी, न कोई मीटिंग, न कोई जल्दबाजी। घर में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो जय की मौजूदगी से और गहरी लग रही थी। सैनवी किचन से चाय बनाकर लाई। कपों से उठती भाप कमरे में फैल गई। आर्यन हॉल में बैठा था। सामने जय फर्श पर खिलौनों से खेल रहा था, कभी कार चलाता, कभी खुद से बातें करता। सैनवी ने चाय टेबल पर रखी और एक पल जय को देखती रही। जय हमारे पास कब तक सचमुच के लिए आ पाएगा? सैनवी ने आर्यन से अचानक पूछा। उसकी आवाज शांत थी, मगर शब्दों में बेचैनी छुपी हुई थी।
मतलब बच्चे को वहां रहना बहुत मुश्किल है।